फिर इसके बाद आप देखिए कि हजरत नूह इनके इन चार इल्जामात के जवाब में क्या कहते हैं। यहाँ से आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कॉन्फिडेंस दिखेगा। हम जहाँ तक टॉपिक है उसके बाद फिर इंशाल्लाह इकट्ठा इस पे एक डिस्कशन कर सकते हैं कि लोगों का मसला क्या होता है और वो उस बात को समझना क्यों नहीं चाहते। लेकिन आयत 28 में ज़रा हजरत नूह का जवाब सुनिए इन चार इल्जामात को लेने के बाद। काला, फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम, अरे तुम इन कुन तो अला बैनतिन मिन रब्बी, जरा गौर करो अगर मैं पहले से ही अपने रब की तरफ से बैजीना पर था। अब ये लफ्ज़ बैजीना आप देखेंगे सूरत में बहुत दफा आएगा, तो समझ लीजिए कि बैजीना से क्या मुराद है कि देखो मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे बीच में गुजरी, कोई मैं नया शख्स नहीं हूँ, तुम्हारी कौम का हूँ, मेरा किरदार, मेरा इखलाक, मेरा रवैया, ये सब कुछ तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं एक शरीफ नफ्स इंसान हूँ, सलीम उल फितरत हूँ, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। तो कभी तुमने सोचा कि इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी का हामिल शख्स कभी झूठ बोल सकता है? बस फर्क अब इतना पड़ गया कि वह आतानी रहमत मिन इंदिही, अब उसने मुझे अपने पास से खास रहमत भी अता कर दी है। यहाँ रहमत से मुराद नबूवत, दीन का इल्म। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह का फजल क्या होता है, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की दौलत, दुनिया का माल, लेकिन रहमत किस पर होगी जिसके ऊपर अल्लाह अपने दीन के खजाने खोल दे। फ़ौमियत अलैकुम, ये वो चीज़ है जिसको तुम्हारी नज़रों से पोशीदा रखा गया। अभी तुम्हें अल्लाह की ये रहमत रहमत नहीं दिखती, ये वही जो मेरे पास आती है ये तुमसे शेयर नहीं की जाती। यानी मुराद जहाँ रहमत से क्या है, वही। और आपको पता है कि नबी के पास जब वही आती है तो हम लोगों को पता नहीं चलता ना, तो इशारा है कि अल्लाह की रहमत से जो वही आती है उसकी कैफियत, उसकी हकीकत, इसको तुम नहीं जान सकते। तो मैं तो बस इतना बता सकता हूँ जितना अल्लाह ने मुझे बताने का हुक्म दिया है, अब तुम्हें दिखा तो नहीं सकता। तो लिहाजा अनुल जिमु कुमूहा, तो क्या हम चिपका दें तुम पर इसको? हा के नीचे लिख लीजिए रहमा, हिदायत, वही। क्या हम तुमको जबरदस्ती हिदायत दे दें जबकि वान तुम लहा कारिहून, जबकि तुम लोग इसको नापसंद करते हो? ये बड़ी खूबसूरत बात है। यानी अब एक बात ऐसी है जो तुमको पसंद ही नहीं आ रही, तो क्या हम जबरदस्ती इसको तुम्हारे सर पर थोप दें? हम तो मजबूर नहीं कर सकते आपको कि अल्लाह को मानो, रसूल को मानो। यहाँ देखिए एक बड़ी खूबसूरत बात नबी ने बता दी, और वो क्या है कि जब तक किसी के अपने दिल में हिदायत को पाने की तड़प ना हो, हिदायत उसको नहीं मिलती। ये लफ्ज़ अनुल जिमु कुमू है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है, पढ़ने में भी बोलने में भी। असल में ये लफ्ज़ पता क्या था? अनुल जिमु कुमुहा, ये जो मीम के बाद वाव है ना, इसको गोल कर ले, ये एक्स्ट्रा है। अगर वही लफ्ज़ होता ना तो पढ़ना बड़ा मुश्किल था, अनुल जिमु कुमुहा कुमुहा। तो अरबी जुबान में कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशन लफ्ज़ों के आ जाते हैं जिनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसमें वाव बढ़ा दी जाती है। इस वाव को कहते हैं वाव इश्बाह, शुबा बढ़ जाता है। तो ये वाव इश्बाह का है, और अगर इस लफ्ज़ का रूट देखें तो क्या होगा? लजीमा, लाम जामीम, पीछे भी पढ़ चुके हैं। सूरह फुरकान में पढ़ेंगे जहन्नुम का अजाब क्या है, कान आजाबो लिजामा, चिपकने वाला। अब जरा इस बात को समझ के देखिए तो आप कुरान की लफ्जी खूबसूरती को भी नोट करेंगे कि क्या हम जबरदस्ती हिदायत तुमसे चिपका दें। देखिए इसको समझ लीजिए, हिदायत का मामला कैसे है स्कॉच टेप का। आपने देखा होगा कि स्कॉच टेप कैसी होती है, उसके ऊपर चिपकने की सलाहियत होती है ना, लेकिन कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं कि जहाँ पे टेप नहीं चिपकती। मसलन आप देखिए कि स्कॉच टेप आपके हाथ में, आप एक बड़े से बर्तन में पानी डालें और उस पानी के ऊपर उस टेप को चिपकाना चाहें, क्या होगा? पानी में चिपकने की सलाहियत नहीं है, ठीक है, आप कहेंगे ये टेप बेकार है, चिपक ही नहीं रही। आप उधर से उठाते हैं, फिर आप कहते हैं चले मैं किसी और चीज़ पर ट्राई करके देखती हूँ। आप ले लीजिए कोई जल, कोई लिक्विड चीज़ थोड़ी सी थिक जो होती है, उसके ऊपर ज़रा चिपकाने की कोशिश करें, नहीं चिपकेगी। लेकिन उसी टेप को आप किसी प्लास्टिक के ऊपर चिपकाएं, लकड़ी के ऊपर चिपकाएं, लोहे पे चिपकाएं, धात पे चिपकाएं, कैसे चिपकती है? اترتی بھی نہیں ہے، فرق کس بات کا ہے؟ ٹیپ میں چپکنے کی صلاحیت ہے، اس سرفیس پہ صلاحیت نہیں ہے. اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں سکاچ ٹیپ کیا ہے، وہی ہدایت. اس میں تو بذات خود چپکنے کی صلاحیت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ہدایت کو ابزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کبھی کسی چیز پہ آئل لگا ہو نا تو اس پہ بھی ٹیپ نہیں چپکتی. کبھی آپ نے یہ کلنگ دیکھا ہو جو ہم اپنے کھانوں کے اوپر چلاتے ہیں، آج جا کے دیکھ کے دیکھیے گا. آپ اس کلنگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹیں اور آپ ایک پائریکس کی ڈش کے اوپر لگائیں، صرف یعنی پائریکس کی ڈش ہے اس میں آپ نے کوئی چیز رکھی ہے، اتنا ٹکڑا کاٹیں جو دو دو انچ لمبا ہو صرف چاروں طرف سے، آپ دیکھیں گے کہ نہیں چپکے گا، اتر جائے گا. ایک خاص ٹیپ جو ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس ٹکڑے کو لمبا کرتے ہیں، وہ پلاسٹک ریپ ہو کے جب دوبارہ اپنے ہی جیسے ٹکڑے پہ آتا ہے تو بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اصل سائز سے بڑا لیتے ہیں. اسی طرح جب تک ہدایت لینے والے کے دل میں چپکاؤ نہیں ہوتا نا، ہدایت نہیں لیتے. کتنا آپ تڑپے کچھ لوگوں کے لیے، کتنا آپ نے سنانے کی کوشش کی، کتنا بلایا، کتنی دعوتیں کھائیں کھلائیں، کتنوں کو بلایا اور کتنوں میں تڑپ بھی جاگی، لیکن کیا ہوا؟ کیوں نہیں چپکے آج تک اس وحی سے؟ کیوں نہیں یہ ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا؟ کبھی کبھی کا چپکنا اور بات ہوتا ہے، وہ تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے گزارا کرتے. آپ دیکھیے ٹیپ کئی ایسی ہوتی ہے وقتی طور پہ چپک جاتی ہیں، آپ دیوار پہ کوئی چیز چپکائیں فوراً چپک جائے گی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد گر جائے گی. نقصان کیا ہوگا کہ آپ اس کے اندر سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو کبھی کبھی ہدایت کے ساتھ چپک جانا اچھا. کبھی کبھی کیسے؟ رمضان میں چپک گئے تو رمضان گیا تو چھوڑ دیا، یا پھر کبھی دوسری صورت کیا ہوئی، کوئی دکھ کوئی بیماری آئی تو چپک گئے، اور سکھ آیا تو چھوڑ دیا. اور کبھی کبھی اس سے اپوزٹ بھی ہوا، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی فراغت میں تھے تو چپکے، اور جب فراغت سے فارغ ہوئے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کیا نقصان ہوگا؟ کبھی بھی ریلائیبل نہیں بنیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہم کو میں بدل دیجئے، اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ ہدایت میرے ساتھ ایسی چپکے کہ کبھی نہ اترے، تو مجھے پھر اپنے اندر چپکنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. اوپر ویکس لگ جاتا ہے. آپ سوال ذہن میں لا سکتے ہیں کہ کس چیز کا ویکس ہوتا ہے؟ خواہشوں کا ویکس، آرزوؤں کا ویکس، خود پسندی کا ویکس کبھی کبھی ہمارے اوپر لگتا ہے، کبھی شک کا ویکس آ جاتا ہے. ایسی بیچ میں رکاوٹیں، نہ نظر آنے والی شخصیت پر ایسے کھوکھلے خول آ جاتے ہیں کہ ہمارا پھر اس ہدایت کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہوتا. تو حضرت نوح کی اس بات کے درد کو محسوس کیجئے، تم نہیں لینا چاہتے میں کیسے دوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا میں تمہیں اچھا کیسے لگاؤں، تم آنا نہیں چاہتے میں تمہیں کیسے بلاؤں. انلزمکموہا، جب تک آپ کے اپنے اندر طرف نہیں ہے آپ اس کتاب کے آخری مرحلوں پہ نہیں پہنچیں گے. یہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنتی ہی تب ہے جب آپ کے اندر بھی چپکنے کی صلاحیت ہو جائے. کبھی آپ نے کوئی ڈبل ٹیپ دیکھی ہے؟ ڈک ٹیپ ایک ہوتی ہے، ڈبل ٹیپ ہوتی ہے. ڈبل ٹیپ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر بھی چپکا ہوتا ہے، اس کے نیچے بھی ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ آپ نے کسی ایسی چیز کے ساتھ لگانی ہوتی ہے کہ جو چیز اوپر لگ رہی ادھر بھی کچھ نہیں تھا، تو دوسری طرف نہیں. آپ ایک پیس پہلے اس دیوار پہ لگائیں گے، وہ ٹیپ پہلے دیوار سے جڑے گی ادھر سے، پھر ادھر سے آپ گھڑی یا کچھ سیل یا کوئی چیز لگائیں گے تو چپکے گی. آپ ڈبل ٹیپ بن جائیے، نہ صرف یہ کہ آپ ہدایت پہ چمکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی چپکائیں گے. اور اگر ہم خود نہ سمجھیں، اگر ہماری اپنی زندگی میں ابھی تک یقین آیا ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پیچھے کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر زیادہ دن نہیں چپکے گی یہ ہدایت، پھر ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہاں تک کی جتنی بات ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ نبیوں کے دل میں اخلاص بھی ہوتا ہے، بے لوس بھی ہوتے ہیں، کوئی اجر نہیں مانگتے، آگے آیت آنے لگی ہے، لیکن بڑے لوگوں کو اس راستے میں قربانیاں چونکہ دینی پڑتی ہیں اس لیے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. غریب لوگ کہہ لیں، غریب سے مراد اب یہاں پیسے کے غریب نہیں ہے، سٹیٹس کے بھی غریب ہیں. جیسے ہم اپنے آپ کو لیں، میں اپنے آپ کو لوں، ہو سکتا ہے سٹیٹس وائز آپ سب میں سے میں سب سے زیادہ غریب ہوں، مجھے نہ کوئی جانتا ہے، نہ میری کوئی اتنے لمبے چوڑے مراسم ہے، میرا کوئی معاملہ ہی نہیں سوسائٹی میں، کوئی میری سے ہی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو کوئی کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں स्टेटस वाइज बहुत गरीब हूँ, तो अब अगर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलती हूँ या अगर मैं आपको वीकेंड पे भी पढ़ा दूँ या वीकडेज में भी पढ़ा दूँ तो मुझे ज़्यादा कुर्बानी नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ लोगों के पास दुनिया इतनी होती है, दुनियादारी, और वो समझते हम कामयाब है। लिख लें ये बात, ये जो हम अपने इर्द गिर्द लोगों का हजूम, मेहमान, खाने, दावतें, शादियां, ब्याह, मंगनियां, इसको कामयाबी कभी ना समझिएगा। ये दुनिया की रौनक है बस। अच्छा लगता है आपको कोई मिले, आप उसको मिले, कोई आपको खिलाए, आप खिलाए, ये अच्छी रौनक है, लेकिन आप कामयाब नहीं है। अगर जुम्मे से लेके इतवार तक आप सारा दिन रात लगे दावते करते कराते रहे और उसमें आपको एक नमाजे भी बमुश्किल पढ़नी पड़े, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वीकेंड बड़ा कामयाब गुजरा। कामयाबी इससे नहीं होती। हाँ, इसमें इंसान के अंदर की जो है ना, उसको बहुत हवा मिलती है। देखा मैं कितनी पॉपुलर हूँ, देखा मेरा अखलाक कितना अच्छा है, देखो फैमिली वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं, देखो मैं एक इशारा करती हूँ मेरी दोस्तें उड़ती हुई आती हैं और खूब खाती हैं, फिर कितनी मेरी तारीफें करती हैं। वो अंदर से अना फूल रही होती है, अना फूल रही होती है। और अना क्या होती है इस वीक, जो हमने उसकी मिसालें देखी हैं, मेरा ख्याल है जो साथी थे कि इस दफा हमने वीकेंड के सैटरडे कोर्स में अना की सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखी हैं, पिछले वीक थेरी पढ़ी थी। ये वो चीज़ें हैं जब तक आप अपने आप पे लेके इसको काउंसलिंग के तौर पे डिस्कस नहीं करते, आपको अपने मामले ही नहीं समझ आते। तो हम कहते हैं कि ठीक है पढ़ लिया काफ़ी, हमें ज़रूरत ही नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? ये दुनिया, बस दफ़ा हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं, ये नहीं करना, वो करना, ये भी करना, वो भी करना, किस चीज़ को छोड़ते हैं हम? आप खुद बताइए। वो छोड़ते हैं जिसमें कोई ग्लैमर नहीं होता, और वो ले लेते हैं जिसमें पंप एंड शो होता है। याद रखिए, अपनी कामयाबी की दलील हमेशा एक बात रखे, पहले ये देखे दो चीज़ों में एक काम करना है जिसमें मुझे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, और दूसरा ये कि जिसमें दूसरा ज़्यादा खुश हो जाएगा। मुझे वो काम करना है, पहले वो करना है जिसमें मेरा फ़ायदा है, दूसरे का फ़ायदा हो ना हो मुझे उससे क्या लगे। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इंसान है ना, हम गलत फैसले करते हैं, हमारी तबीयतें बहुत झुक जाती हैं उन चीज़ों की तरफ जिसमें हमें वाहवा मिल रही होती है, और कुछ नहीं तो कुछ नफ्स की ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो जब ये कुछ करना पड़ता है तो मुश्किल है। आज अपने आप से पूछ लें, हमारा इम्तिहान है, बड़े नुकसान तो दूर की बात है, यकीन कीजिए हम तो छोटे छोटे काम नहीं कर सकते दीन के नाम पे। स्टेटस बहुत बड़ी चीज है, सर पे दुपट्टा तो लिया तो बाल बैठ जाएंगे, स्काफ लिया तो उम्र से बड़े लगेंगे, अबाया पहन के बाहर गई तो मैं अफसर साहब की बेगम नहीं दिखूंगी। चलो इसको मॉडर्नाइज किस्म का कोई खूबसूरत सा कीमती सा ब्रांडेड गाउन पहन लेती हूँ जिसको मैं अबाया कह दूंगी। जब खूबसूरत मेकअप किए होंगे तो अब मेकअप किया है तो अब नमाज नहीं पढ़ सकती, और मट्टी पे सजदा किया तो मेरी पलकें गिर जाएंगी। यकीन कीजिए हम तो छोटी छोटी कुर्बानियां नहीं दे सकते दीन के नाम पे। हमने तो अभी वो सीखा ही नहीं, वो मज़ा वो लज्जत तो आई नहीं है। तो बास बड़े लोगों को हक की कबूलियत से दूर करने वाली चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, छोटी चीज़ें होती हैं। इसलिए इस वक्त अपने आप को देखें और अगली आयतों को सुने कि नबियों का दर्द क्या था। एक दो दिन की कहानी नहीं थी, 950 साल की कहानी थी। तड़प के कहते हैं लोगों तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या करूं? वन तुम लहा कारे हुन, इफ यू डोंट लाइक इट हाउ कैन आई गिव इट टू यू, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर एक और, तुम्हारे दिल में अगर शुभ है तो उसको भी दूर कर लो। आयत 29, व या कौम ला असअलुकुम अलैहि मालन, और ऐ मेरी कौम के लोगो मैं तुमसे इसके बदले में कोई माल तलब नहीं करता। क्योंकि नजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह ही के जिम्मे। वमा नबी तारे दिल लजीना मनु, और मैं तो उन लोगों को धुतकारने वाला भी नहीं हूं जो ईमान लाए। लाज सलू को मलई ही मालन पे पीछे बात हुई थी, नबियों को नहीं चाहिए होता किसी से। देखे ये है बैजीना, शुरू में नबी ने जिक्र किया ना कि मैं तो बैजीना पे हूं, ये बहुत बड़ी बैजीना होती है कि मेरा किरदार साफ है। कोई मिसाल बताओ, शऊर को बेदार करो, सोचो कि मैं तुमसे इस तबलीग के बदले में क्या मांगता हूँ। क्या तुम्हें कहता हूँ कि तुम ज्यादा लोग आओ ताकि तुम ज्यादा से मुझे ज्यादा माल मिले? तुम्हारी अकल नहीं काम करती। देखिए दुनिया में 4 की जगह 6 घंटे लगाएंगे तो 1/3 कह लीजिए या 1.5 के हिसाब से मनी ज्यादा मिलेगी ना। दुनिया के कामों में लोग जॉब करते हैं ना, ओवर टाइम भी लगाते हैं, नाइट शिफ्ट्स भी करते हैं, साफ समझ आ रहा होता है किससे कुछ मिलना है। रातों को भी काम करते हैं बेचारे, और कई मर्द दिनों में भी करते हैं, डबल ड्यूटीज करते हैं। दीन वाला की ओवर टाइम लगाए, बताओ क्या तुमने मुझे कोई पे देनी है कि तुम्हें वीकडेज में काम करोगे तो इतनी पे मिलेगी, वीकेंड पे इतनी मिलेगी। लासालु को मलई ही मालन, क्या तुम्हारी अकल में ये नहीं आता कि एक बंदा जो बगैर किसी मतलब के तुम्हें इस काम का मौका देता है, तो तुम उसको कितनी हिरस है इस बात की कि लोगों को इस चीज से फायदा हो जाए। और यकीन करे कि ये वो बेजीना है, जब तक ये बेजीना आपके हाथ में ना हो, आपकी बात में वजन ही नहीं पैदा होता। आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते होंगे ना आप लोग, पर आवर्स? यहाँ का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में बड़ा मारूफ है, अमेरिका में भी बहुत है। यहाँ भी यकीनन होगा कि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो स्कूल कॉलेज की तालीम काफ़ी नहीं होती, प्राइवेट ट्यूटरिंग करनी पड़ती है। प्राइवेट ट्यूटर्स की नज़र कहाँ होती है हर वक्त? घड़ी पे होती है, जैसे 1 घंटे की बात होगी ख़त्म, वो पहले ही 5 मिनट अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर जाते हैं कि घंटा पूरा करना है, ख़त्म। अब इसके प्राइवेट ट्यूटर के मुकाबले में एक सच्चे दाइये दीन को रखिए, आज तक किसी गिरे पड़े बंदे की भी अगर आपने टॉक सुनी हो जो दीन के लिए करता है, कभी उसने ये कहा कि लोगों बस 1 घंटे की बात हुई थी, अब मैं जा रहा हूँ, मैं बात आगे नहीं कर सकता, मैं नहीं ले रहा आगे और टाइम, मैं नहीं दे रहा, नहीं, नो क्वेश्चन आंसर बिकॉज माई टाइम इज़ ओवर, कभी कभी किसी से भी सुना आपने? ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये है वो बेजीना जो लोगों के शऊर को बेदार करने के लिए काफ़ी है। भाई चलो कोई दिन को काम करे, रात को काम करे, वीकडेज वीकेंड में सोच से करे कि ज़्यादा कमा लेंगे, बुरी बात नहीं है अगर वो हलाल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन नबी तो बेचारे किसी से पानी के घूंट के भी दावेदार नहीं होते थे, क्योंकि इनजरी इल्ला अल्लाह। इसके बाद एक अगली देखिए दलील कि वमा नबी तारी दिल्लजीना मनु, ये मैं ईमान वालों को तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ से नहीं हटाने वाला। ये जो लफ्ज़ है ना, तारिद, तो इरादा, तर्द से, सख्ती से दूर करना, किसी को हकीर समझकर पीछे करना। एक एतराज़ जो नबी सल्लम से भी था और हज़रत नूह से तो साफ लग रहा है, वो क्या था कि आपके पास अदना तबके के लोग आके बैठ जाते हैं, मासियां, ड्राइवर, गरीब लोग हैं, आप इनको हटाइए। एक मौके पे अल्लाह के नबी से भी कुरैश मक्का ने ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी महफिल में ये सारे ही आए होते हैं चरवाहे। अब आप सोचिए, जो सारा दिन बकरियों को चराता है तो पसीना तो आता ही होगा ना। शेफर्ड बेचारे अब्दुल्ला बिन मसूद चरवाहे थे, हजरत अबू हुरैरा कौन थे, कबीला दौस के गुलाम थे। तो ये गरीब माड़े लोग थे, कहते थे मोहम्मद तेरी जगह में ये आके बैठे होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनसे घिन आती है, इनको हटाओ, ज़रा खुशबू करो, कोई अच्छे कारपेट बिछाओ, कोई नीचे ऊपर ज़रा खूबसूरत जगह हो, ताकि हम बड़े लीडर आके बैठे। हल्का सा नबी के दिल में एक बार सिर्फ ख्याल आ गया था कि चलो इन बड़ों की बात सुन लूँ, ये छोटे तो मेरे अपने ही हैं, इनको डांट भी दिए इन्होंने फिर आ जाना है, लेकिन ये ना जाए तो अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल कर दी थी, अबस व तवल्ला अंजाहु लामा वमा युदरीक अल्लाहु यज़्ज़क्का। ए नबी, इन बड़ों को खुश करने के लिए इस नबीना को जो बेचारा आए ही अपनी इसलाह के लिए, उसको पीछे कर देते हो, हालांकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि ये मानते हैं, माने नहीं मानते, ना माने तो कहा मैं इनको नहीं छोड़ सकता। जो इतने प्यार से, जो इतने इखलास से अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं, मैं इनको अपने से पीछे कैसे कर दूं? और ये बात आप कुरान में कई जगह पढ़ेंगे, सूरत अल-अन्नाम आयत 52 में भी हम पढ़ चुके, वला तत्रुदिल लजीना यदून रब्बहुम, मत दूर करो उन लोगों को जो दिन रात रब को पुकारते। इसी तरह सूरह कहफ में हम पढ़ेंगे, वसबिर नफ्सका माल लजीना यदून रब्बहुम, अपने आप को रोक लो उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लम की एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन, ए अल्लाह मुझे मिस्कीनी की हालत में जिंदा रखना और मुझे मिस्कीनी की हालत में मारना, और वख्शुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के ज़ुमरे में यानी उनके ग्रुप में रखना। क्यों? सही रिवायत में आता है कि वो लोग जिनको अल्लाह ने माली तौर पे पीछे रखा है, क़यामत के दिन पैसे रुपए वालों से 500 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे। है ही कुछ नहीं जो तुलवाएं, शॉपिंग ही कोई नहीं की, तो जिनके पास लंबे लंबे बस्ते होते हैं वो लाइनों में लगे रहते हैं, और फ्री हैंड जो आते हैं वो बोर्डिंग पास लेते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों में तलब और तड़प ज्यादा होती है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं इनको नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्नहु मुलाकू रब्बिहिम, वो यकीनन अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, और मैं तो लेकिन तुमको जहालत में डूबे हुए लोग देखता हूँ। देखिए हजरत नूह कितने बेबाक हैं, इन बड़ों के सहर में मुबतला नहीं हुए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हजरत नूह के पास आने वाले लोग जाहिल थे? सारे जाहिल नहीं थे, लेकिन जहालत की दो किस्में होती हैं, ये लिख लीजिए। एक है इल्म ना होना, खबर ही नहीं, पता ही नहीं, जिसको आप कह सकते हैं इलिटरेसी, अनलेटर्ड होना, अनपढ़ होना हमारे यहाँ। दूसरी जो हालत होती है, किसी काम को जैसे करना चाहिए वैसे ना करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इन लोगों को कौन सी जहालत में मुब्तला देखते हैं? कि इल्म तो तुम्हारे पास बहुत है, दुनियावी इल्म तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन तुम असल इल्म से दूर हो। तुम दुनिया में उन चीज़ों के पीछे खो गए हो कि जिन्होंने तुम्हें आखरत से दूर कर दिया। तुम्हें दुनिया और आखरत का रेशो ही नहीं पता। तुम्हें यही नहीं पता कि इस दुनिया के लिए उतनी कोशिश करो जितना तुमने इसमें रहना है, और उस आखरत के लिए उतनी कोशिश करो जितना तुम्हें वहाँ रहना है। तुम अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पा रहे। तुम दुनिया जो पहले ही बहुत है उसको और से और से और से और लेने में खुद को गर्क कर रहे हो, हलाक कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी आखरत, जिसके मामले में तुम अभी कंगले हो, खाली हाथ हो, बैंक करप्ट हो, अभी तक तुम्हें उसकी फिक्र नहीं लगी। कितनी ना समझ होगी वो औरत कि जिसके घर में वो ग्रोसरी जो पहले से है, फिर वो और ही मंगवा ले, और दूध ख़त्म था वो ना मंगाए। कितनी ना समझी की बात। और हम में से कोई इतना कम अकल है घरेलू ज़िंदगी में? हमने तो पर्चियां लिख लिख के रखी होती, क्या है, क्या ख़त्म होने वाला है और क्या अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो क्या दुनिया के मामले में कई लोगों का हाल नहीं है? वो दुनिया जो पहले ही बहुत थी, सिमट भी कोई नहीं रही, उसको फिर जमा करने चल पड़ते हैं, लेकिन वो आखरत जो कुछ भी पास नहीं है उसको पीछे कर देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला यहाँ जाहिल कहता है, कि जिनको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं अभी तक पता। कहा तुम जाहिल हो, मैं क्या कर सकता हूँ? और यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होता वो जाहिल है। असल तो चीज़ अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। तुम अपने बच्चों के पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, नमाजें भी छोड़ देते हो कि बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमानी है हमने, लेकिन वही बच्चे अपनी आखिरत से गाफिल हों तो तुम्हें इतनी फिक्र नहीं है कि इसके नतीजे में क्या होने वाला है, तो लिहाजा मैं तुम्हारी बातों में नहीं आता। आयत 30 में देखिए आप, दिल सोजी का अंदाज़ है। वया कौमी मैंसुरुनी मिनल्लाहिन, और है मेरी कौम के लोगों, अंदाज देखिए, प्यार नहीं छोड़ा, कट डाउन नहीं किए रिलेशंस, मेरी कौम हो तुम तो मेरे लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, ज़रा सोचो कि अगर मैं इनको अपने हाथ से भगा दूँ, किनको, ये गरीबों को, तो मैं अनसुरुनी, तो कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के मुकाबले में? यानी ये अल्लाह के पहुँचे हुए लोग, अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, अगर मैं इनको हटाता हूँ तो कोई मेरी मदद कर सकता है? ये दुआएं मांगते हैं, इनकी दुआओं से अल्लाह मुझे भी कुछ देता होगा। ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, इनके जिक्र करने से मेरे भी दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती होगी, तो तुम्हारे कहने पर अगर इनको धुतकार दूं तो बताओ फिर अल्लाह की नाराजगी से मुझे कौन बचाएगा? अफला तज़क्करून, क्या तुम लोग नसीहत हासिल नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते? तुम अपनी दुनिया बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हो, तो क्या मैं अपनी आखरत बनाने में इतनी भी मेहनत ना करूं? तुम्हें क्या हो गया? और फिर आखिर में देखिए कि इनका किस्सा, आयत 31, वला अकूलु लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाह, और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। यानी मैंने ये दावा कब किया तुमसे कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं? देखिए कभी किसी नबी ने ये कहा कि हा, मेरे पास बहुत बड़ा ख़जाना है, फला अमेरिकन बैंक में मेरा अकाउंट है और ब्रिटिश बैंक में मेरे शेयर्स हैं, कभी किसी नबी ने ये कहा? तो जब कहा ही नहीं तो फिर तुम उसको और क्यों दिलाते हो? पीछे भी हमने ये बात पढ़ी थी ना, कि जब कहा ही नहीं जा रहा कि तुम्हें मैं ये कर सकता हूँ तो तुम मेरे ऊपर एतराज़ क्यों करते हो? मैंने नहीं कभी तुम्हें कहा, और ना मैंने कभी तुम्हें ये कहा है कि मुझे गैब का इल्म है, ना मैंने कोई अपने आप को बहुत पहुँचा हुआ और अल्लाह का वली करार दिया, और ना मैंने अपने आप को इस बात से लिया कि अल्लाह ताला ही मेरे सामने ساری چیزوں کو پیش کر دیتا ہے، میں کاجز اور ایک مسکین بندہ ہوں، جب جو پیغام اللہ کی طرف سے مجھے مل جاتا ہے میں اس کو لے لیتا ہوں، جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں اس کو تمہیں کیسے دے دوں؟ آپ کو نبیوں کی شخصیت سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کیسا لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ دکھتے ہیں؟ مجھے تو لفظ مسکین ہی سمجھ آتا ہے، عاجز، مسکین، اپنے کام میں پکے ہیں، فرم، اپنے عقیدے پہ دل ٹھکے ہوئے ہیں، لیکن ظاہری کو جو دراہٹ نہیں ہے ان میں، جس کو پھندے ہاں کہہ لیں، وہ نہیں دکھتے، عاجز ہیں. تو یاد رکھیے، جب کبھی اللہ آپ کو اپنے دین کی کام کی توفیق دے، اپنے آپ کو نیچے رکھے، اپنا پروفائل ہمیشہ لو رکھے. لو پروفائل کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں نا، اللہ ان کو اوپر لے جاتا ہے. اور جو لوگ ہر وقت اسی گمان میں نا کہ مجھے کیوں کہہ دیا، مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی یہ بات، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیے ان کی مثال کڑک برتن کی ہے. کبھی آپ نے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھایا ہوگا یا خریدے ہوں گے. دو قسم کے پلاسٹک ہوتے ہیں، ایک فلیکسیبل پلاسٹک ہوتا ہے اور ایک کڑک ہوتا ہے. کڑک دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ذرا سا بوجھ آپ اس میں زیادہ ڈال دیں، یا کرسی ہے کوئی ایسی یا برتن ہے، تب دیکھیں وہ کریک ہو جاتا ہے. لیکن جو فلیکسیبل ہوتا ہے، جو نسبتاً تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ جتنا مرضی وزن ڈال دیں وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. دین کا کام کرنے والے کو جب تک اپنی شخصیت کے معاملے میں دوسروں کی باتوں کے مقابلے میں فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی، وہ دین کا کام نہیں کر سکے گا. وہ جیسے کرتے ہیں نا کہ دم پہ پاؤں آ گیا تو چیخنے لگے، اور یہ انا ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اتنی ظالم چیز ہے انا، واللہ کتنوں کو خیر کے راستے سے چلتے چلتے اس نے پیچھے کر دیا. ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن وہ اپنی انا کو پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو نبیوں کی ذات میں ہمیں کہیں کوئی انا کا ایسا کوئی آرٹیفیشل نمونہ نہیں دکھتا. تو کہا کہ لوگو، میرے پاس کہاں خزانے ہیں؟ سورۃ انعام آیت 50 میں بھی ہم نے بات کی تھی، اور ولا علم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ہاں، ولا قول انی ملک، اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں. کیا نہیں کہہ سکتا؟ اب آپ یہاں کامنٹس لگا لیں تاکہ آپ کو جملہ سمجھ آ جائے. کیا نہیں کہوں گا؟ کہ لن یوتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں واقعی یہ اتنے حقیر ہیں کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. تمہیں کیا پتا، تمہاری نظروں میں ارزل ہیں، لیکن اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ نے ان کو مرتبے دینے ہیں. آخرت کی زندگی میں فروہم و ریحان ان کے لیے تیار ہے، و جنت و نعیم، سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے. میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ ان غریبوں کو کچھ نہیں دے گا؟ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے. انی ذل من الظالمین، ہاں اگر میں نے ایسا کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ کہ لن یوتیہم اللہ خیرن، تو یاد رکھنا انی ذل من الظالمین، تو میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. بہت درد مندی ہے حضرت نوح کے اس جملوں میں. حضرت نوح کی باتوں سے آپ کو کیا فیل ہوا؟ دھونس، دھاندلی، عاجزی ہے نا. اخبت الی ربہم کی ایک عملی تصویر ہم پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے بھی ذکر ہوا تھا نا کہ اب یہ سارے نبیوں کے قصوں میں آپ کو دکھیں گے. کچھ ہوتے ہیں جو پیغام سن کر محبت بن جاتے ہیں، عاجز، پیچھے رہنے والے، دبے ہوئے، مسکین، ان کو اپنی ذات اور چھوٹی لگتی ہے. اور کچھ قرآن کا پیغام سن کر اور جھگڑالو ہو جاتے ہیں. قوم کا جواب سنیے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نو کی سیدھی سادھی باتوں کو وہ کیا کہتے. قالو، وہ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم نے تو ہم سے خوب جھگڑا کیا. فاکثرت جدالنا، خوب جھگڑا کیا. یعنی نوح علیہ السلام کی علمی باتیں، عقلی باتیں، منطق والی، دلیل والی، بیجینہ والی، ان ساری باتوں کا جواب تو کوئی ان سے بننے پڑا، تو ضد پہ آئے، ہر دھرمی پر اترے، کہنے لگے جی بہت جھگڑے کرتے ہیں آپ. یہ جملہ بھی ہر دین والے کو سننا پڑتا ہے. آپ بھی دین پہ جب عمل کریں گی نا، اور کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا کیا، اور آپ اس کا دلیل دیں گے نا، کہیں گے اچھا جی بہت جھگڑا، بہت لمبی ہو گئی آپ کی زبان، بہت بولنے لگ گئیں آپ. کئی گھروں میں صرف اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ بہو پہلے نہیں بولتی تھی، اب بولنے لگ گئی، ये कुरान ने इनको बोलना सिखा दिया। देखिए, हमने लोगों को अल्लाह के भी हक दिए होते हैं, दीन पढ़ के बस हम वो हक वापस ले रहे होते हैं कि सॉरी मैंने तो आपको मोर देन एक्स्ट्रा दे दिया था। जो ही हम लोगों को उनकी असल पे लेके आते हैं ना, तो लोग जो है वो फिर हमारे साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। अब हम क्या करें? आप कहेंगे हाँ मैं तो पहले ही कहती थी ना कि मेरे घर वाले तो मुझे आज तक समझ ही नहीं पाए। तो इसका जवाब यह है कि अपनी आवाज़ों को और पस्त कर लें, और सॉफ्ट, शुगर कोटेड कर लें, ब्लेंडेड करें। जितनी बड़ी बात पे आपने अमल करना है उतनी जुबान छोटी कर लें। हमारा हाल क्या कि एक तो हम दीन पे अमल कर रहे होते हैं, साथ हमारी जुबानें कुंद छुरियों की तरह चलती हैं, बॉडी एक्शंस भी होते हैं, और साथ हम अना के शिकार होके कहते देखा मैं पहले से भी नेक हो गई हूँ और तुम तो अब मेरी नज़रों में और भी गुनाहगार हो। तो इन मौक़ों से इवॉइड करना चाहिए। उनके समझाने को बहस करना कह रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं बहस ना करो, हमारा सर ना खाओ, या अपने फलसफे बंद करो, मेरे से आर्ग्यूमेंट ना करो। चंद बातें सुन्नी लोगों के लिए बाज़ दफ़ा मुहाल हो जाती हैं दीन की। इट्स टू मच, नो मोर दर्स। तो आपको मुझे इसका जवाब देना सिखाया गया है कि आप भी ऐसी बातों को बड़ी मोहब्बत से, प्यार से ले जाइए और लोगों से बहस ना करें। एक चीज़ जो दीन वाले को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है ना, वो बहस है। आप यहाँ बैठे हुए ना, आप अगर किसी बात पे बहस में आ जाएंगे ना, तो थोड़ी देर में ये क्लासरूम जाइए मैदान कारजार बन जाएगा। बहसों से इज्तनाब करें, आपस में भी खुदा के लिए बहस ना किया करें, साथियों में, घर वालों से, यहाँ मैनेजमेंट वालों से बहसें छोड़ दें। बात समझ आती है मान ले, नहीं समझ आती ना माने, लेकिन खुदा के लिए बहस ना करें। इससे इंसान के अंदर सख्ती आती है। आप देखिए कि जब भी नया नया दीन इंसान के पास आता है ना, तो बड़ा सख्त होता है। जैसे आपके सपारे हैं, जिस दिन पहली दफ़ा खोलती हैं पहला पारा, कितना कड़क होता है, मज़ा आता है सोच के खोल के। फिर आवाज़ें भी बहुत आती हैं, फिर आप रोज़ खोलते हैं, आखिर तक पहुँचते हैं तो पारा कैसा हो चुका होता है, ढीला हो चुका होता है ना। जब हमारे अंदर नया नया इल्म आता है ना, तो हम भी अकड़ जाते हैं, नए कागज़ों की तरह बजते हैं, खट 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 खट। लेकिन जब नया इल्म आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा, आपके अंदर आएगा, तो आपको अपने सिवा सब नेक दिखेंगे। किसी बंदे को अपने आप को अगर परखना है ना, तो वो ये देखे, मुझे दूसरे लोग अपने से अच्छे दिखते हैं कि बुरे, नेक दिखते हैं कि बुरे। यानी मैं बरमला इसका ऐलान कर सकती हूँ, और इसमें अल्लाह के हुक्म से कोई एग्जैजुरेशन नहीं है, कि मुझे दुनिया का हर बंदा अपने से ज़्यादा अच्छा, अपने से ज़्यादा एक्टिव और फाल दिखता है। आप कहेंगे आप ये कैसे कह सकती हैं, आप तो दीन का काम कर रही हैं। तो मैं उसमें सिर्फ एक जुमला ख़ुद को कहती हूँ कि मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई कि अल्लाह मेरे से दीन का काम कैसे ले रहा है। मैं तो इतनी कमज़ोर, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं था, हाँ अल्लाह मुझसे दीन का काम ले रहा है। आप देखिए कि आप अपने आप को सबसे नीचे खड़ा करें, तो अगला बंदा आपको कहेगा नहीं नहीं आप में कुछ खूबी है, ऐसे नहीं कहते, थोड़ा ऊपर हो। और अगर आप पहले ही ऊपर चढ़ गए तो दूसरा आपको नीचे खींचेगा ना। तो हमेशा अपने अंदर आजिज़ी लाएं, सोचों को भी हम्बल करें। ये कहना कि दूसरा बंदा बुरा है, मैं कह सकती हूँ मुझे आज तक ज़िंदगी में कोई बुरा बंदा मिला ही नहीं। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ आज तक किसी बंदे ने ज़िंदगी में ना मेरा दिल दुखाया, ना मुझे तड़पाया, ना उसने मुझे तकलीफ दी। मुझे तो आज तक कोई बुरा बंदा मिला ही नहीं ज़िंदगी में, और अल्लाह आगे भी ना मिलाए। मेरा तो वास्ता हमेशा बहुत अच्छे लोगों से मिला। क्यों? इसलिए कि मुझे अपना आप पता है। हर इंसान जब अपनी लिमिटेशंस को देखता है ना, कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या मेरे अंदर कोई गुण है, तो आप देखेंगे कि उसको दूसरे अपने आप से अच्छे लगेंगे। नबियों के सामने ये बहसें और कट हुज्जतियाँ करने वाले जो लोग हैं ना, ये अपनी बड़ाई का शिकार होते हैं, इसलिए इनको दूसरे लोग बहुत बुरे लगते हैं और ख़ुद बड़े लगते हैं। इसीलिए फिर आगे देखिए कि इनकी बात थोड़ी धौंस वाली है। फाती नबी मात आई दुना, तो बस ले हो हम पर वो अजाब, यानी जिसकी हमसे धमकी देते हो, ले हो। इन कुन तमिना सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब बताइए कि ये बात कौन कहेगा, जिसके अंदर ये गुमान और यकीन की हद तक बात भरी हुई है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, डालो मुझ पर हाथ, सबको पता है मेरे ऊपर कोई नहीं हाथ डाल सकता, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। इस तरह की बातें करने वाले खुद पसंदी का शिकार होते हैं। आपका ख्याल है वो बेवकूफ़ थे कि हज़रत नूह को कहते हैं कि अजाब ले आओ? अगर उनको ज़रा सा भी शक होता ना कि ہمارے کہنے پر نو نے عذاب لے آنا تو کبھی مانگتے؟ یہی رعونت آپ کو سورت انفال میں کس کی بات سے ملی تھی؟ ابو جہل. کعبے کا پردہ تھام کے دعائیں مانگتا ہے کہ ہم میں سے جو صلہ رحمی کو توڑنے والا اس کو آج توڑ دے. بیوقوف تھا ابو جہل؟ نہیں بیوقوف نہیں تھا. یہ ایک عجیب قسم کی رعونت ہوتی ہے کہ بندے کو جب بہت سارے لوگ سلام کرنے لگتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہی ہوں. اور یہ مولوی بیچارہ نو سیدھا سادہ ٹخنوں سے اونچی شلوار داڑھی ہے کپڑے اس کو نہیں پہننے آتے مولوی ٹائپ بندہ یہ کیا لگتا ہے بیچارہ اس کے کہنے پہ کیا ہونا ہے؟ کہنے لگا لیا پھر عذاب. جواب سنیے حضرت نوح کی کتنی خوبصورت بات ہے. 33 آیت. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا. ومان تم بھی معجزین. ہاں جب وہ آ جائے گا تو تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے. یہ بات کون کہے گا؟ دیکھیے کہ ہر بات میں میں عذاب لاتا ہوں, میں اللہ کو کہتا ہوں عذاب آ جائے, میں اللہ کو کہتا ہوں تم پکڑے, لیکن آپ نبیوں کے ٹون دیکھ رہے ہیں. اللہ لائے گا تو لائے گا, میرا تو اتنا بھی بس نہیں. آج ہمیں چار لفظ آ جائے نا تو ہم لوگوں کو اپنے اشاروں سے سناتے ہیں بڑے رابطے ہیں جی اوپر ہمارے, بس بات کروں گی نا دیکھنا پھڑک کے مر جاؤ گے. یہ ہو جائے گا میرے منہ نہ لگنا, میری زبان بڑی کالی ہے. تو بس استغفر اللہ. ہر جگہ نبیوں کے جملے مینرز اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ لانا چاہے گا تو لے آئے گا, بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ عذاب لے آیا تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے. اور رہ گیا میرا اور تمہارا معاملہ تو آئے 34. ولا ينفعكم نصحي. اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ان ارادتو اگرچہ میں ارادہ بھی کر لوں. کس چیز کا؟ انصح لکم, کہ میں تمہیں نصیحت کروں. یعنی پوری کوشش کے باوجود میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کر بھی لوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے. اب اس میں دیکھیں دو باتیں کہ نبی اپنے آپ کو اتنا سائڈ پہ کرتے ہیں کہ تمہاری پکڑ کا یا تمہیں انعام دینے کا میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں لیکن اللہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا تو تمہیں میں کچھ نہیں دوں گا. دوسری چیز دیکھیں یہاں پھر وہی تقدیر کا موضوع آ گیا کہ اللہ کیوں گمراہ کرنے کا ارادہ کرے گا. تو وہی ہدایت کی سکاچ ٹیپ والی مثال لے لیں. اللہ نے تو ہدایت تمہیں دینے کا فیصلہ کیا تھا, تم اس کو اپنے ساتھ چپکانا ہی نہیں چاہتے, تو پھر میں تمہیں کیسے دے دوں؟ کس طرح تمہیں یہ سب کچھ ملے گا؟ تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ میں بری ہوں, انا بری. تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہے, وہ تمہیں پکڑے تمہیں چھوڑے ہوا ربکم, وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے, تمہارے ساتھ معاملہ ختم ہوگا. اب تم جانو تمہارا رب جانے, میں نے بات بتا دینی تھی بتا دی, مانتے ہو تو مان لو نہیں مانتے تو چھوڑ دو. آخری آیت ہے اس ڈائیلاگ کی, کیونکہ آیت 36 سے پھر منظر بدلنے والا ہے. کیا ام یقولون افتراہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا؟ قل ان افتریتہ, آپ کہیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہو, ہو سے مراد قرآن پاک, فعلی اجرامی, تو اس کا وبال تو مجھ پر ہی آئے گا. وانا بری مما تجرمون, اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو. ایک دم کہانی سناتے سناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ, اعتراض والا جملہ. حضرت نوح کے ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم کے بیچ میں یہ ساری کہانیاں ہوئیں, تو ان باتوں کو سن کر مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی یہ باتیں اور قصے تو آپ نے خود ہی بنا لی ہیں. تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب مکہ والوں کو کہہ دو اگر یہ باتیں میں نے کر لی ہیں تو اس کا وبال مجھ پر آئے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ تمہیں میں سٹوریز آف پروفٹ کے نام پہ جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر آ جائے گا. لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر واقعی اللہ کا کلام ہے اور آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ इसके नतीजे फिर आपको भुगतना पड़ेंगे, बस मैं ये कह देता हूँ कि मैं इससे बरी हूँ। इसके बाद दोबारा आप देखिएगा हज़रत नूह का किस्सा शुरू होगा। बस कहते नहीं आयत 35 में नबी सल्लम को नहीं, हज़रत नूह और कौम नूह को ही मुखातिब है, तो क्या तफसीर बन जाएगी? यकूलून कौन होंगे? कौम नूह। इफ्तराहू घड़ा है इसको, तो हू में या कुरान की बजाय सहाइफ़े नूह हो जाएंगे। दोनों बातें ठीक है, इसलिए कि हर नबी के साथ जो मामलात होते हैं वो बिल्कुल दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं। यहाँ तक आप देखिए कि हज़रत नूह की दावत का वो नुक्ता था जहाँ वर्बल बातें होती हैं, ज़ुबानी बातें होती हैं। नबी किस तड़प और तलब के साथ लोगों को बुलाते हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 6 दिन की कहानी नहीं, 950 साल की कहानी हो रही है। अगला हिस्सा बहुत सेंटिमेंटल है क्योंकि नस्लों के डूबने की बात है उसमें। कैसे बाप के सामने उसका बच्चा डूब रहा है और बाप कुछ नहीं कर सक रहा, तो आज मैं और आप कैसे मुतमईन होके बैठ सकते हैं? हर एक अपने आप से पूछे। मैं तो जब भी ये नबियों के किस्से पढ़ती हूँ तो मेरा दिल उदास होने लगता है। बात से बात ऐसे लगता है कि कुछ हमदर्द मिल गए। हमदर्द से समझते मतलब जिनका दर्द हमारा सेम है। दीन की दावत का काम हर दौर में एक ही जैसा रहा, कोई बड़े पैमाने पे कर ले या छोटे पे कर ले। कल उसको नबी कहते थे, आज उसको दाई दीन कहते हैं। हर दौर में दीन वाले को लोगों ने लट डाउन तो किया। कोई मुंह से नहीं कहता, बाजार हम बड़ा कहते मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, बस वो होते 5-10 मिनट की इनकी इज्जत। जल्दी से आओ, इनके आगे चाय रखो, इनको पानी पिलाओ, इनको खिलाओ पिलाओ, वापस छोड़ाओ जाओ, मस्जिद में इनकी नमाज का वक्त है। अंदर एक भूत सवार होता है कि ना इनसे कोई अकल लो, ना मशवरा लो। हाँ, मशवरा फिर कब लो? जब कोई दम दरूद कराना हो, कोई वजीफा कराना हो, कोई ख्वाब की हकीकत मालूम करनी हो। अपनी दुनियादारी में हम कभी किसी दीनदार को उस काबिल नहीं समझते कि ज़रा उससे भी तो मशवरा कर ले कि ये जो काम हम करने लगे ये ठीक है कि नहीं है। उसमें हम अपनी मर्जी करते हैं। तो लेकिन आप देखिए कि अल्लाह अपने नबियों की कैसे कदर करता है।